तो याति सात्मताम राजन पूर्व रूपम असंत्यजन, इस प्रकार की बात है। ये तो मेरे गुरु है ही, इसके अलावा ये शरीर भी मेरा गुरु है, इस शरीर से भी मैंने बहुत शिक्षा ली है, क्योंकि शरीर था तभी तो मैंने आत्मकल्याण के लिए इतनी शिक्षा ली। इसके अलावा भी मैंने शिक्षा ली कि शरीर है ये परकीय वस्तु है, इस शरीर के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए, शरीर के साथ यथा योग्य बर्ताव वैसे ही कर देना चाहिए जैसे हम औरों के साथ करते हैं, लेकिन शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। पारक्यम इति, ये परकीय वस्तु है। देखो, मनुष्य शरीर के लिए स्त्री से विवाह करता है, शरीर से पैदा होने वाले बेटों को अपना मानता है, शरीर के आराम के लिए नौकर चाकर रखता है, पशुओं को रखता है, संपत्ति को इकट्ठा करता है, परंतु भाई आगे जाकर क्या होता है कि जिन जिन को भोग से सुख की आशा रख करके इकट्ठा करता है उसका एक संस्कार इसके अंदर पड़ता है, और जब ये शरीर नष्ट होता है तो जैसे वृक्ष है वो स्वयं नष्ट होने से पहले कितने ही फलों के अंदर बीज डाल करके नष्ट होता है, लेकिन और भी उससे वृक्ष हो जाते हैं। एक वृक्ष में हजारों मील के वृक्षों का बीज रहता है। इसी प्रकार से एक ये मानव शरीर मिला, यदि इससे हमने कल्याण नहीं किया तो न जाने कितने शरीरों का बीज लेकर के हम मर रहे हैं और कितना कितना हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। तो स्वान्ते सकृत क्षमावरुद्ध धन सदेह सृष्टवास्य बीज अमावसी दति वृक्ष धर्मा। ये शरीर क्या है? एक वृक्ष है। अतः यहां हमको निर्बीज होकर के मरना चाहिए, सबीज होकर के नहीं मरना चाहिए। देखो यहां क्या दशा हो रही जीव की। ये जब संसार की सुखाशक्ति में फंसता है तब इंद्रियां इस जीव को चारों तरफ से नोचने लगती है। जीव तो कहती है हमारे लिए अच्छा अच्छा रस लेकर के आओ, कहते हैं उस समय में कान कहते हैं शब्द लेकर के आओ, ग्रहण कहते हैं अच्छे अच्छे इत्र फैलाएल सुगंधी लेकर के आओ, और कर्मेंद्रियां कहती है हमारे लिए ये काम करो। तो जिस प्रकार से एक तो पुरुष है और उसके कई स्त्रियां हैं, सब स्त्रियां अपने अपने मन की करवाने के लिए उसको नोचती रहती हैं, तंग करती रहती हैं, ऐसे ही जीव भी इन इंद्रियों के अधीन होकर तरह तरह से इंद्रियों से प्रताड़ित होता है, इसको शांति नहीं मिलती है। अरे यदु, ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर तो बहुत ज्यादा समझने वाला शरीर है, इसमें तो बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। इस ब्रह्मा ने पहले बहुत से पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को बनाया तो उनको संतोष नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता से संपन्न इस मानव शरीर को बनाया तो स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई और भगवान को प्रसन्नता हुई कि आह, मेरा सृष्टि बनाना सफल हो गया, मनुष्य को बनाया तो हमने हमारी सृष्टि बनाने का काम सफल कर लिया। लेकिन मनुष्य है वो ये नहीं सोचता कि हमारा जीना सफल हो गया यदि हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं तो। ओहो, ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, न जाने कितने जन्मों के बाद ये हमको मानव शरीर मिला है, और वो भी बहुत बड़े भारी अर्थ को देने वाला है, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए मिला है, लेकिन ज्यादा दिन हमारे पास ठहरेगा नहीं, अनित्य है। इसलिए मनुष्य को जिस काम के लिए मानव शरीर मिला उसके लिए जल्दी प्रयत्न करना चाहिए। क्या भाई थोड़ा बहुत विषय भोग ले तो, क्या नहीं विषय तो और जगह बहुत पड़े हैं, सुख पाना है तो स्वर्ग में ऐसे सुख है जो मनुष्य को क्या मिलेंगे, और दुख ऐसे ऐसे पड़े नरकों में जो मनुष्य भोग नहीं सकता है। मनुष्य का शरीर सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए है, इसके शरीर को ज्यादा आराम देते हैं तो शरीर बिगड़ जाता है। देवताओं के शरीर को जितना सुख दिया जाता है उनका शरीर उतना ही पुष्ट होता है, और मनुष्य को जितना ज्यादा आराम से रखा जाता है उतना ही उसका शरीर खराब होता है, और इसको जितना ज्यादा कष्ट दिया जाता है तब भी इसका शरीर खराब होता है। इससे सिद्ध होता है इसकी बनावट से भी, अरे ज्ञान से सिद्ध होवे तो बात अलग है, इसकी बनावट से भी ये बात सिद्ध होती है कि यही तनु कर फल विषय न भाई, न तो सुख प्राप्ति के लिए है और न ये दुख प्राप्ति के लिए है। तो किस बात के लिए है कि निश्रेय, इसको अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, कल्याण के लिए मानव शरीर मिला है। इसलिए मैं तो भाई वैराग्यमान होकर के इस पृथ्वी पर फिरता हूं, मेरी कहां आसक्ति, किसी चीज की आसक्ति करूं भी तो किसके लिए करूं और कहां तक करूं। इसलिए फिर मैंने विचार किया कि भाई हमको जब इतनी ज्ञान की बातें गुरुजनों से मिल चुकी है तो ब्रह्म एतद् अद्वितीयम् वै गीयते बहुधर्षि भी, ये ज्ञान ही वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो सद्ज्ञान है, कल्याण के साधनम का जो ज्ञान है, यही वास्तव में अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है। इसी में ही मनुष्य को स्थित रहना चाहिए। ऐसा कहकर के वह तो अपने यदृच्छा से घूमने लग गए और महाराज यदु अपने आश्रम में आ गए, महाराज यदु अपने महल में आ गए। तो अवधूत जी के वचनों को सुनकर के वे हमारे पूर्वज सब आसक्तियों से मुक्त होकर समचित्त हो गए। तो हे उद्धव, मैंने भी धर्मशास्त्रों में तरह तरह से धर्म की बातें बताई हैं, वर्ण धर्म बताया है, आश्रम धर्म बताया है, तत्त्व कुलों का आचार व्यवहार मैंने बताया है। तो मनुष्य शरीर कामना के अधीन होकर के चलने के लिए नहीं है, तत्त्व कर्तव्य कर्मों को करने के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि वह तत्व का ध्यान करे। तत्व ध्यान क्या है? गुणेषु तत्व ध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्। उसके मन में संसार की कामनाएं बहुत उठ रही हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि इस कामना का अर्थ, उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये सब उल्टा निकलेगा। हम चाहते हैं कि सुख मिले और दुख न मिले, लेकिन उल्टा ही हो रहा है कि सुख तो मिलता नहीं और दुख मिलता है। तो उसकी सारी चेष्टाएं वैसे ही व्यर्थ है जैसे स्वप्न में किसी आदमी को बहुत धन मिल जाए, वो धन मिला हुआ कोई काम का नहीं। इसी प्रकार से संसार में कोई विषय भी मिल जाए तो उसके लिए कोई काम के नहीं है। तो मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे संसार से ऊपर उठ जाए, और प्रवृत्ति में भी वैसे ही कर्म करने चाहिए, चाहे वे कर्म निवृत्ति मूलक हो चाहे प्रवृत्ति मूलक हो, दोनों ही कर्मों से यही चाहिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इसके लिए वह मेरे तत्व को जानने वाले गुरुजनों के पास में जावे, वहां किसी प्रकार से कपट न करे, वहां मान न रखे और उदासीन होकर के सब पदार्थों में मुझे देखे। जिस प्रकार से लकड़ी है वह अलग अलग, आग है वो अलग अलग लकड़ी में अलग अलग दिखती है एक ही अग्नि तत्व। वह लकड़ी के पतलेपन से स्वयं पतली दिखती है पर पतली नहीं है, और लकड़ी के मोटापन से मोटी दिखती है परंतु मोटा नहीं अग्नि, अग्नि तो अपने ही रूप में है। ऐसे ही तत्त कृतान गुणान अंत प्रविष्ट आधत्ते, वो सब जगह मुझे देखते हैं, और जैसे जैसे शरीर है वो शरीर की आकृतियां अलग है, इनमें आत्म तत्व में वैसा ही हूं, इस प्रकार से सब जगह देखना चाहिए। निरोध उत्पत्ति अणु वृह नानात्वम, कहीं उत्पत्ति है कहीं पर निरोध है, कहीं पर नानात्व है कहीं पर छोटा है कहीं पर बड़ा है, ये जो कुछ नानात्व है ये केवल बुद्धि का बनाया हुआ भ्रम है। वास्तव में इन सब में मेरी समानता ज्यों की त्यों रहती है। इस प्रकार से जो विचार करते हैं वे व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, और जो ऐसा विचार नहीं करके गुणों के द्वारा बनाए हुए संसार में और शरीर में आसक्त हो जाते हैं, वे लोग संसार में बंधन को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि विद्याच्छिदात्मने, अपने ज्ञानात्मक स्वरूप से चित्त शक्ति के द्वारा ऐसे अज्ञान को वो काट देवे। काटने के लिए बताया गुरुजनों की सेवा करें और ऐसा विचार रखे। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं कि देखो, कई शास्त्रों में कई लोगों का ये मत है कि कर्म को करने वाले, कर्म को भोगने वाले, सुख दुख को भोगने वाले जीव नाना है। जीव नित्य है और नाना है, शास्त्र भी नित्य है, लोक भी नित्य है, काल भी नित्य है, इस प्रकार से लोग मानते हैं। अब ध्यान देना, ये मत है कर्मकांडियों का, जैमिनियों का मत है, जैमिनी के अनुयायियों का मत है। तो वो जैमिनी अनुयायी लोग मानते हैं, अब इसमें कुछ अंश तो सही है और कुछ अंश गलत है। जैसे जीव को नित्य माना जाता है, ये बात सही है, लेकिन उनकी नित्यता किस बात को लेकर है कि भोग की प्राप्ति के लिए, कि भाई शास्त्र में आया है अमुक कर्म करो और अमुक लोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये वस्तु मिलेगी, ये भोग मिलेगा, इसलिए कर्म करो। तो शास्त्र नित्य माने जहां से, जिस विधि से हम काम करते हैं वो विधि शास्त्र नित्य है उनके मत में, भोक्ता नित्य है, भोग्य नित्य है और काल नित्य है, ऐसा वे मानते हैं। कहते हैं उनकी दृष्टि में ज्ञान ही उत्पन्न और नष्ट होता है, वस्तु उत्पन्न और नष्ट नहीं होती। परंतु ऐसे मत के अंदर बड़ा भारी दोष है। ऐसे मत में दोष क्या है कि जीव नाना है और सबके सब स्वतंत्र है, तो जीव के सामने बिना चाहे परतंत्रता कहां से आती है, ये दुख कहां से आता है, प्रतिकूलता कहां से आती है। कहते हैं प्रतिकूलता तो इसलिए आती है कि उनको ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए प्रतिकूलता आती है, इसलिए वे वहां पर दुख पाते हैं। कि अच्छा यदि ऐसी बात है तो भाई ये जानते नहीं हो, यदि ये बात मानते हो तो भाई ऐसे बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी है जिनके सामने मौत आती है, तो मौत आती है फिर भी उनको कष्ट होता है, शरीर उनका मरता है, तो ये नित्यता कहां से रही, उनके भोगों की नित्यता कहां रही। आघातम नियमानस्य वध्यस्य न तुष्टिदेह, जिस बकरे की बलि देने वाली बलि होने वाली है, जिसको अभी मारा जाने वाला है, बताओ उसको कोई सुख मिलता है, उसके मन में तो घबराहट रहती है। और यदि उसको कोई हरा घास देवे, उसको पता ही नहीं है, तो हरा घास देवे तो आराम से चरता है, लेकिन वो मरने वाला इस बात का क्या पता। यदि उसको इस बात का पता हो कि मुझे तो अब यहां फांसी पर चढ़ा ही जाने वाला है, तो वो कभी घास में मुंह नहीं लगाएगा। इसी प्रकार से जो मरने वाला व्यक्ति है, जिसके पास भोग पदार्थ है, वो छूटते हैं, तो छूटते हैं तो इसका अर्थ है कि इनका हमारे साथ नित्य संबंध नहीं है। स्वर्ग में चले जाओ, वहां भी तरह तरह की आपत्ति आती है। लोग सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पुण्य का फल भोगेंगे, गंधर्वों के साथ रहेंगे, देवताओं के साथ रहेंगे, उन जैसा वेश बनाएंगे, चले जाओ भले ही, लेकिन आगे जाकर क्षीण पुण्य है। कहते हैं लोक नित्य है, तो नित्य कहां रहा, वही देवता वापिस नीचे के लोक में आते हैं, अपना काम पूरा कर लिया और नीचे के लोक में आते। तो भाई जिन जिन पशुओं को लेकर ये यज्ञ किया जाता है, वही पशु फिर आगे जाकर उनको तरह तरह से कष्ट देते हैं। तो असल में बात क्या है, असल में बात इतनी है कि इंद्रियां है, ये इंद्रियां कर्म से प्रेरित है, माने ये कर्म के अंदर लगी रहती हैं, और सत्व गुण रजोगुण तमोगुण है, ये इंद्रियों को बनाते हैं, इंद्रियां कर्म में लगती हैं, और इंद्रियों के साथ जीव घुल मिल जाता है, और तब इसमें भोगता और भोग्य की कल्पना होती है, मैं भोगता हूं और ये भोग्य है और इंद्रियां मेरे भोग के साधन है। यहां से सबका सब दोष पैदा होता है। और यावत स्यात् गुण वैषम्यम, और जब तक वो गुणों के साथ संग करता है, तब तक अपने में नाना प्रकार की भ्रांति होती है, मैं करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही जाने वाला हूं, मैं ही आने वाला हूं, मैं ही भूखा हूं, मैं ही प्यासा हूं, मैं ही धनी हूं, मैं ही गरीब हूं, मैं पैदा होता हूं, मैं मरता हूं, ऐसे इसमें नानात्वम आत्मन है एक ही, परंतु नानात्व का इसमें आरोप कर लेता है भ्रम के कारण से। और जब तक नानात्व इसमें रहता है, तब तक इसकी परतंत्रता छूटती नहीं है। असल में बात यह है कि यह एक का एक ही है, और न गुणों के साथ इसका संबंध है, न इंद्रियों के साथ संबंध है, न भोगों के साथ संबंध है, परंतु इनके साथ मान्यता से संबंध कर लिया, वो मान्यता इसकी नहीं मिटती है। कितना ही मान लो बनाई, तात्विक दृष्टि से वो अलग का अलग ही रहता है। इसलिए यावद अस्य अस्वातंत्र्यम, जब तक इसमें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता है, तब तक इसको भय लगा ही रहता है। और सार बात है उद्धव, ये काल है, आत्मा है, शास्त्र है, स्वभाव है, लोक है, परलोक है, ये क्या है, ये सब मेरा ही रूप है, मुझे ही अलग अलग नाम से बोलते हैं, इसलिए इधर उधर इनके चक्कर में न पड़कर सीधे ही मेरी तरफ आने का यत्न करना चाहिए। उद्धव जी कह रहे हैं देखो भाई, ये आज का प्रकरण है, बहुत सरस प्रकरण है, ज्ञान की दृष्टि से समझना भी अपने लिए बड़ा कठिन है, लेकिन समझने की चेष्टा करेंगे तो भागवत अपने आप कृपा करेगा ही। तो बड़ी सावधानी से आपने सुने, ये भगवत वाणी है उद्धव जी के पूछने पर, और कहीं कहीं अपने मन से भी दोनों प्रकार से भगवान ने समझाया है, आत्म कल्याण के लिए समझाया है। और भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं में ये ज्ञान प्रदान की जो लीला भगवान कर रहे हैं, ये बहुत भगवान कृपा करके ये लीला कर रहे हैं। सब लीलाओं में भगवान की कृपा है ही, लेकिन उद्धव के बहाने हम सबको जो ज्ञान दे रहे हैं, इसमें भगवान की अतिशय कृपा है। इसलिए इस विषय को सावधानी से सुनते रहना चाहिए। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई, यदि यह जीव इंद्रियों के साथ, गुणों के साथ, भोगों के साथ घुल मिल गया, तब तो इसको घुल मिल ही जाना चाहिए था। और यदि ये अलग है तो फिर इसको अलग ही रहना चाहिए था। ये मिलती हुई बात कैसे है कि भाई ये मिलता हुआ भी नहीं मिलता है, ये तात्विक दृष्टि से अलग का अलग ही है, ये बात कैसे समझ में आएगी? क्योंकि जब ये अपनी दृष्टि से इंद्रियों में भोगों में रचपच गया तो फिर रचपच ही जाना चाहिए था। तो गुणेशु वर्तमानोपि देहदेशु अनपावृत है। आश्चर्य इस बात का है कि इतना विषयों के साथ भटक रहा है फिर भी वे अलग कैसे हो गया, ये विषयों के साथ ही इसको रहना चाहिए। और गुणैर न बध्यते देही, कहते हैं कि नहीं नहीं ये गुणों के साथ बंध नहीं सकता है, क्योंकि गुणों से अलग है, तात्विक दृष्टि से अलग है, ये बंध सकता ही नहीं। अच्छा नहीं बंध सकता है तो फिर ये बंधन को क्यों प्राप्त होता है, फिर ये सुख दुख को क्यों भोगता है, परतंत्र क्यों होता है, क्यों स्वर्ग में नरक में जाता है, क्यों अपने कर्मों का फल भोगता है? नहीं बंधता है तो नहीं बनता ही रहना चाहिए। और ये बताओ कि जो महापुरुष इस संसार से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिनका बंधन नहीं है, उनको हम कैसे पहचाने, उनका क्या लक्षण है, उनका बोलने का, चलने का, सोने का, उठने का, बैठने का, जो भी उनका स्वरूप है वो हमको बताइए। तो महाराज मेरे प्रश्न यही है कि नित्य मुक्त और नित्य बद्ध एक है एव इति मे भ्रम है, कि जो नित्य मुक्त है वही नित्य बद्ध हो गया, ये मेरे मन में भ्रम है। भगवान हंसकर के कहने लगे, देखो उद्धव इसी का नाम माया है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतः न मे वस्तुतः, ये बंधन और मुक्ति ये कब तक है भैया? ये जब ये तभी तक है जब तक हम लोग माया में हैं। जब तक ये जीव माया का आश्रय लेता है तब तक इसको समझाया जाता है कि ये बंधन है और ये मुक्ति है, तात्विक दृष्टि से ये बात है ही नहीं। स्वप्न में सिंह आ गया तो उसको हटाने के लिए हमारे पास स्वप्न के ही शस्त्र चाहिए, और यदि जग गया तो कहेंगे साहब हमको शस्त्र की क्या जरूरत है, सिंह नहीं है तो सिंह नहीं है तो फिर शस्त्र की भी जरूरत नहीं है, और सिंह यदि है तो शस्त्र की भी जरूरत है। वहां जागृत का शस्त्र काम नहीं आएगा। हमारे पास बंदूक है, शस्त्र है और हम सो गए, अब नींद में हमारे लिए हमारे पास में सिंह आ गया तो उसको भगाने के लिए जागृत का शस्त्र काम नहीं आएगा, नींद में स्वप्न के सिंह को भगाने के लिए स्वप्न का ही शस्त्र काम आएगा। इसी प्रकार से जब तक माया में पड़ा हुआ जीव है उसको समझाने के लिए कहना पड़ता है कि एक बद्ध होता है और एक मुक्त होता है। देखो दो प्रकार की बात है, एक तो ईश्वर का और जीव का भेद समझा रहे हैं यहां, और एक जीवों में भी जो बद्ध और मुक्त है उनका भेद समझा रहे हैं। क्या देखो ये गुणों में रचना पचने वाला जो जीव है वो तो बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन मैं हूं जो स्वयं ईश्वर वो बंधन और मोक्ष को प्राप्त नहीं होता हूं, मेरे लिए यहां दो चीज है ही नहीं। आज ही प्रवचन में बात सुनी थी ना कि दिन और रात है ये पृथ्वी पर है, लेकिन सूर्य के यहां दिन और रात नहीं होता, ऐसे ही बंधन और मोक्ष जीव के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं होता, ईश्वर के लिए नहीं होता। विद्या और अविद्या ये शरीरासक्त प्राणियों के लिए मेरी बनाई हुई दो प्रकार की माया है। विद्या से तो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अविद्या से जीव है ये अपने स्वरूप को भूलता है। तो एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्य अविद्या अनादिर विद्या च तथेतर, अनादिकाल से जीव अविद्या से संसर्ग करने के कारण से मेरा ही अंश है, वो ही ज्ञान स्वरूप है, वो जैसे मैं मायातीत वो भी मायातीत है, परंतु माया की तरफ देखने लग गया तो अपने को भूल गया। भाई कोई आदमी तालाब की किनारे खड़ा है लेकिन अपनी परछाई को तालाब में देखता है, और अपने जेब के अंदर रखे हुए नोट है वो बाहर आए हुए उस तालाब के अंदर दिखते हैं, तो एक बार बहम होता है, अरे कहीं मेरे नोट अंदर तो नहीं गिर गए, कहने नहीं नहीं ये तो परछाई है, फिर संभाल लेता है परछाई है। इसी प्रकार से है तो मेरा ही अंश, और वो है वो माया से अतीत, लेकिन जब माया के अंदर अनादि काल से चली आ रही अविद्या है उसके साथ संसर्ग कर लेता है तो भाई अपने में ऐसा आरोप कर लेता है। तो मेरे में और जीव में तो ये अंतर है, मेरे पास माया फड़क नहीं सकती है, मेरे से पैदा होती है ना। तो बताया था कि देखो अविद्या में और माया में अंतर है। अविद्या तो जिसमें रहती है उसको मोहित करती है, और माया है वो जो देखने वाला है उसको मोहित करती है। तो माया दृष्टि व्यामोहिका और अविद्या है वो आश्रय व्यामोहिका। तो माया को कौन देखता है? जीव देखता है। और भगवान से माया पैदा होती है, भगवान को मोहित नहीं करती। और अविद्या है, जीव से पैदा होती है तो जीव को ही मोहित करती है। तो मेरे से माया तो पैदा होती है लेकिन अविद्या मेरे से पैदा नहीं होती, तो मेरे से माया पैदा होती मुझे मोहित नहीं करती। जीव से अविद्या पैदा होती है तो उसको मोहित करती है। यही मेरे में और जीव में अंतर है, तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं। और देख लो, मैं हूं कैसा हूं और जीव कैसा है, हम दोनों एक ही है, सदा सदा के मित्र हैं। हमारी दोनों की कभी भी अमैत्री हुई नहीं। हम दोनों के दोनों सुपर्ण वेतो सदृशो सखायो, एक जैसे हैं हम। जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी हों और दोनों ही पक्षी उसके एक घोंसले में बैठे हों, ऐसे ही हृदय रूपी घोंसले के अंदर जीव और ईश्वर हम दोनों बैठे हुए हैं। उसमें जीव है, उस वृक्ष का फल खाता है, और मैं ईश्वर हूं, इस संसार का फल मैं नहीं खाता हूं। संसार का फल है सुख या दुख। बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्ष का जो फल खाने वाला है वो तो दुबला पतला हो गया, और जो इस संसार वृक्ष का फल नहीं खाता है वो मैं बहुत मोटा ताजा हूं, बड़ा शक्तिमान हूं, और ये संसार का फल खाते खाते बेचारा शक्तिहीन हो गया। ऐसे हम दोनों मित्र हैं। और जब वो फल की तरफ न देख करके यदि उसके मन में आए कि मेरे पास मेरे जैसा कौन है, ऐसा विचार करके वो मेरी तरफ विचार करे, तो आहा, फिर तो हम दोनों का खेल एक निराला ही हो जाए। आत्मा न मान्यंत सवेद विद्वान अपप्पलादो न तो पिप्पलाद। इनमें से ईश्वर है वो तो जीव को देखता है, जीव ईश्वर को नहीं देखता है। इसलिए जो फल को देखता है वो अविद्या से युक्त है, और जो जीव को ही देख रहा है, खाता नहीं है फल को, सबको देख रहा है, वो वास्तव में ज्ञान से संपन्न है। तो जो अविद्या को देखने वाला है वो नित्य बद्ध है, और विद्यामय सतु नित्य मुक्त है, और जो अपने स्वरूप की तरफ विचार किया हुआ है वो नित्य ही मुक्त है। और विचित्र बात तो यह है भाई कि देह में स्थित होता हुआ भी ज्ञानी देह में स्थित नहीं है, और मूर्ख व्यक्ति देह में स्थित नहीं है फिर भी वो देह में स्थित है। ये क्या है? ये अपने अनुभव से देखा जाता है। विषयों में जब इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होता है तब वह अपने को कर्ता धर्ता मान लेता है, वास्तव में वो कर्ता धर्ता नहीं है। ये शरीर है, देवाधीन है, और यह इंद्रिय के द्वारा यहां पर काम करने लगता है तो घमंड करता है कि मैं करता हूं। विद्वान ऐसा घमंड नहीं करते, वो देखते हैं शरीर से कर्म होता है। सूर्य भगवान प्रकाश करने का जैसे घमंड नहीं करते, ऐसे ही ज्ञानी महात्मा घमंड नहीं करते। तुमने पूछा ना कि ज्ञानी कैसे होते हैं, ये ज्ञानी होते हैं, शरीर से चेष्टाएं होती हैं लेकिन वे मैं करता हूं ऐसे उनके मन में ही बात भावना नहीं आती। वे अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। प्रकृति स्थोपी असंसिक्तो यथा खम सविता और अनिल, आकाश जैसे सब में रहता है लेकिन सबसे निर्लेप, सूर्य जैसे सबको प्रकाशित करता है सबसे निर्लेप, वायु जैसे सब में रहता है सबसे निर्लेप। पर देखो ये बात कब समझ में आएगी उद्धव? जब उसके मन से संकल्प का नाश हो जाएगा तब समझ में आएगा। और जब संकल्प का नाश होता है, संकल्प के ही अधीन नहीं होता है और अपने स्वरूप में स्थित होता है, फिर चाहे कोई निंदा करो चाहे स्तुति करो उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये बात सुन ली, सुनने से समझ में आएगी कि ना शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे, यदि शब्द ब्रह्म को तो जानता है पर ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं है, उसका तो केवल परिश्रम ही परिश्रम मिलेगा। जैसे बांझ गाय है, उसकी सेवा करते रहो, दूध तो मिलेगा नहीं, बछड़ा मिलेगा नहीं, न तो बछड़े जैसा प्यार मिलेगा न दूध मिलेगा, बांझ गाय की सेवा करो। ऐसे ही शब्द ब्रह्म की उपासना करे तो बात अलग है। शब्द ब्रह्म माने शास्त्र की बातें जान ली लेकिन वैसा अनुभव नहीं किए, तो भाई बांझ गाय की सेवा हुई और कुछ नहीं हुआ है। इसलिए भाई जिज्ञासा करनी चाहिए, और अपने आप का जो नानात्व, अपने आप में जो नानात्व का भ्रम आया है उससे विरक्त होना चाहिए, और मनोमयी अर्प्य और अपने मन को मुझे अर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं हमारा मन तो महाराज स्थिर नहीं रहता, बहुत चंचल है, बहुत ध्यान देना, भगवान कहते हैं यदि अनीशो धारयतु मनो ब्रह्मणि निश्चलम, यदि परब्रह्म परमात्मा में मेरे स्वरूप में तुम अपने मन को न लगा सको तो क्या मई सर्वाणी कर्माणी निरपेक्ष है समाचार है, अपने कर्म है वो तो तुम मुझे अर्पित कर ही सकते हो कि हे प्रभु ये जितने कर्म है ये आपको मैं अर्पित करता हूं, न तो मैं कर्म को करने वाला हूं और न ही कर्म से मिलने वाला जो फल है उसकी मेरी इच्छा है, इस प्रकार से मुझे अर्पित कर देना चाहिए। और फिर लोगों को पवित्र करने वाली मेरी कथा है उसको बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए, मेरा जन्म है उसके विषय में सुनना चाहिए, मेरा कर्म है उसके विषय में सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, भक्ति पैदा होगी। और हे उद्धव, संत महात्माओं के पास जाते तब उनसे जो भक्ति पैदा होती है उस भक्ति से मैं बहुत जल्दी मनुष्य के वश में हो जाता हूं। सत्संग लब्धया भक्त्या महिमाम से उपासिता सवई में दर्शितम सद्वीर अंजसा विंदते पदम, और इस प्रकार से वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं जो संत महात्माओं के संग से प्राप्त की हुई भक्ति से मेरे अंदर प्रेम करते हैं, बहुत जल्दी मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अब ये भक्ति की बात सुने तो उद्धव जी कह रहे हैं कि महाराज हे उत्तम श्लोक, आपके भक्त कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण है बताइए महाराज, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं, बार बार मौका ऐसा मिलेगा नहीं इसलिए आप अपने हृदय की बात मुझे बता दीजिए। स्वेच्छोपात पृथक बापू, आप अपनी इच्छा से ही शरीर धारण किए, अरे हमारी इच्छा से आप शरीर धारण करते तो फिर हम इच्छा कर लेते और फिर कभी आपको बुला लेते और फिर हम ज्ञान की चर्चा कर लेते, लेकिन हमारी इच्छा से तो आपने अवतार लिया नहीं है, आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है और अब आप अपनी इच्छा से ही फिर कभी मिलेंगे, न जाने आपकी कभी इच्छा हो ना हो, हम पराधीन है और अभी आप अवतार लिए हुए, इसलिए अपने मन की बात दिल की बात आप हमको बताई दीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, जो मेरे भक्त होते हैं उनमें सबसे पहली बात क्या है कि सब पर दया करने वाले होते हैं, उनके मन में किसी के प्रति द्रोह नहीं रहता है, वे सार चीज को पकड़ने वाले हैं, सत्य सार है और अनवद्यात्मा और समय सर्वोपकारक है, सबका उपकार करने वाले, कामनाओं से कभी भी अभिभूत होने वाले नहीं, किसी प्रकार से वे सुख और दुख से दुखी होने वाले नहीं, अपने कर्म में वे कभी प्रमाद करने वाले नहीं, दूसरों के गुण और दोष का विचार करने वाले नहीं, और धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत ससत्तम है, श्रेष्ठ भक्त वो होता है सर्वरु धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का आश्रय छोड़ करके वो मेरी शरण लेता है, और भजन्ति अनन्य भावेन, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं, ज्ञात्वा अज्ञात्वात ये वही माम यावान यश्चास्मि यादृश, मैं कैसा हूं कैसा नहीं उसको जाने न जाने इसकी परवाह नहीं है, वो तो ये सोचे कि भगवान हमारे हैं, ऐसा मुझे मान करके अनन्य भाव से मुझ में स्थित हो जाए, बस वे मेरे श्रेष्ठ भक्त होते हैं। उन भक्तों में स्वाभाविक बात है कि जहां मेरा मंदिर होता है, मेरी मूर्ति होती है, उसका पूजन किया करते हैं, मेरे जो भक्तजन है उन भक्तजनों का दर्शन करते हैं, उन भक्तजनों के मुख से निकलने वाला जो मद विषयक अमृत है उसका पान करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा जन्म का उत्सव मनाते हैं, मेरे सामने नाचते हैं गाते हैं, और मद गृहोत्सव है और मेरा जो घर है अर्थात मंदिर है उसमें उत्सव मनाया करते हैं, और जितना भी काम करते हैं वो सब काम को केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने पास जितनी चीज वस्तु है सब वो मुझे अर्पित कर देते हैं, उनमें इसमें कोई घमंड नहीं होता ऐसा करने में, कोई मान नहीं आता, कोई दंभ नहीं आता, और कृतस्य अपरिकीर्तनम, और जो कुछ मेरे लिए करते हैं वो किसी को जनाते नहीं है कि मैं इतनी रोज माला फेरता हूं, मैं रोज इतनी बार दर्शन करता हूं, इतनी देर ध्यान करता हूं, ये बात किसी से भी वो कुछ कहते नहीं है। अपिदीपावलोकम में नोपयुंजान निवेदितम, और मेरे लिए जो चीज अर्पित कर दी जाती है वो ऐसे निरपेक्ष हो जाते हैं, दीपक का भी अपने लिए वे प्रयोग नहीं करते कि महाराज क्या करें, संसार में हमको तो ये संसार की चीजें बहुत प्रिय लगती हैं, इससे मैं क्या करें, तो एक देखो सूत्र बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि भाई यद्यदिष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मने, तुमको संसार में बहुत ज्यादा कोई विषय अच्छे लगते हो, बहुत प्रिय लगते हो, तो तुम वो विषय लाकर मेरे सामने अर्पित कर दो कि भाई अच्छे कपड़े पहनने की शौक है तो अच्छे से अच्छा बाजार में कपड़ा खरीदो और खरीद करके वो कपड़ा मेरे अर्पण कर दो, उसकी पोशाक तुम मेरे लिए बना दो, इत्र की शौक है तो बढ़िया से बढ़िया इत्र लाकर तुम मेरे लगा दो, तुमको फल की शौक है तो कोई बढ़िया से बढ़िया जो बाजार में फल है वो लाकर मेरे अर्पण कर दो। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप में आप अर्पण कर दिए तो आपके अंदर वो जो अच्छे कपड़े पहनने की इत्र फूले लादी की जो बात है वो तुम्हारी निकल जाएगी और वो तुम्हारा शोक खत्म हो जाएगा और तद अनंत आय कल्पते, और मेरे को जो तुमने भेंट कर दी वो तुम्हारे लिए अनंत फल देने वाली होगी। तो भाई तुम्हारे मन से ये वासना निकल जाएगी। सूर्य अग्नि ब्राह्मण गौ वैष्णव आकाश पृथ्वी जल इन सब में मेरी पूजा कर सकते हो, वेदत्रयी के द्वारा सूर्य की पूजा कर सकते हो, यज्ञ की आहुतियों से मेरी पूजा कर सकते हो, ब्राह्मण को अतिथि के रूप में बुलाकर उसकी पूजा करके और उसमें ब्राह्मण को ब्राह्मण की पूजा से मेरी पूजा कर सकते हो, गाय को पवित्र घास खिला करके तुम मेरी पूजा कर सकते हो, इस प्रकार से तुम सब जगह मेरी पूजा कर सकते हो। और युक्तम चतुर्भुजम शांतम ध्याये ध्यायन अर्चित समाहित, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ हूं इस प्रकार से मेरे स्वरूप का चिंतन करें। महात्मा एक महात्मा ने कहा कि भाई हम ध्यान तो करते हैं चतुर्भुज भगवान का और उपदेश हम लेते हैं गीता जी का, आदर्श लेते हैं हम राम जी का और तिलक लगाते हैं शंकर भगवान का। कैसी विचित्र बात है कि महाराज चार भुजा वाले का ध्यान क्यों करते हैं, कि भाई हम दो भुजा वाले का ध्यान करें, दो भुजा तो मनुष्यों की बहुत है, कल ने भगवान दो भुजा से आए और हमने उनको सामान्य मनुष्य मान लिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए चार भुजा का ध्यान करते हैं। और ध्याता जैसा ध्यान करता है उसके अनुसार ही भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, तो चार भुजा से तो भगवान ही आएंगे, दूसरा कोई मनुष्य तो आ सकता नहीं। दो भुजा का ध्यान करेंगे तो दो भुजा तो मनुष्य की होती है और भगवान किसी मनुष्य में आ गए और हमने उस मनुष्य को मनुष्य ही माना और भगवान नहीं माना, तिरस्कार कर दिया, तो ठीक नहीं है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि चतुर्भुज रूप से मेरा ध्यान करो और जो कुछ तुम कर्म करो सब तुम मुझे अर्पित कर दो। ये मैंने बहुत गोपनीय बात बताई है, इससे भी बढ़कर एक गोपनीय बात है उद्धव में और कह रहा हूं, सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि। एक तो गोपनीय और सुगोपनीय, सुगोपनीय माने अत्यंत गोपनीय, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वगुह्यतमम, ऐसे भागवत में कहते हैं सुगोप्यम। वो क्या है देखो उद्धव, न तो मुझे योग वश में कर सकता है, न मुझे ज्ञान वश में कर सकता है, न मुझे स्वाध्याय वश में कर सकता है, न त्याग है कि दक्षिणा है कि इष्ट है कि आपूर्त है कि व्रत है कि छंद है कि तीर्थ है, ये सब मुझे इतना पसंद नहीं है जितना मुझे सत्संग पसंद है। यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगापो हो हिमाम, ये जो सत के साथ प्रीति होती है, कहते हैं उस प्रीति से इतनी निर्मलता आती है जीव में, इतना निर्मल होता है, यदि वो राक्षस भी होता है तो भी वो तो महान पवित्र है। देखो तुम प्रहलाद की बात देखो ना, वो प्रहलाद है हिरण्यकश्यप का बेटा है, अपवित्रता तो बहुत है लेकिन सत के साथ प्रीति होने के कारण से आज भी हम उसका नाम लेते हैं। सुग्रीव है, हनुमान है, ये सब क्या है, ये पशु ही तो थे, बानर ही तो थे, लेकिन सत के साथ संग किया, मेरे से प्रेम किया, उस मेरे प्रेम के कारण से उनमें जातिगत दोष था तो भी उनमें पवित्रता ज्योंकी त्यों बनी रही। और तो और उद्धव, हमने तुमको गोकुल में भेजा था ना, वहां पर तुमने गोपियों को देखा, अब बताओ उन गोपियों ने कोई वेद की कथाएं नहीं सुनी, उन्होंने कोई बहुत बड़े महात्माओं की उपासना भी नहीं की, कोई बहुत बड़े व्रत भी उन्होंने नहीं पाले, कोई बहुत बड़ी तपस्या भी नहीं की, लेकिन केवल मुझसे प्रेम किया, उस मेरे प्रेम के कारण से आज गोपियां मेरे हृदय में बसी हुई हैं। जिस समय मैं बलराम जी के साथ अक्रूर जी के साथ मथुरा से मथुरा के लिए रवाना हुआ था, उस समय में इतनी गोपियां मेरे लिए विरह के अंदर डूब गई, क्या बतावें, तो बिगाड़ भावे नमे वियोग है तीव्रा धयोन्यम ददृशु सुखाय, उनको मेरे अलावा और कहीं सुख की कल्पना भी नहीं हुई कि चलो कृष्ण जा रहा है चले जाने दो, हम कृष्ण के बाद और किसी के सहारे से हम दिन निकाल लेंगे, ऐसे उनके मन में नहीं आई। और जिन जिन रात्रियों में मैंने उनके साथ रास का आयोजन किया था, कहते हैं उनको याद किया बिचारियों ने, क्षणार्ध बत्ता पुदरंग तासाम हीना मया कल्प समा बबू, वे रात्रियां तो उनके सामने एक क्षण के समान बीत गईं, लेकिन मेरे वियोग में बेचारी जलती 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 थोड़ा सा भी समय उनके लिए मणान कल्प के समान व्यतीत होने लगा। तो बताओ, ऐसी जो मेरे में प्रेम करने वाली गोपियां हैं, अपनी बुद्धि को मुझमें अर्पित कर देने वाली हैं, वो मेरे से दूर थोड़े ही हो सकती हैं, मैं उनसे दूर थोड़े ही हो सकता हूं। उन्होंने एक तरह से अपना नाम, अपना रूप, अपने आप को मुझमें ही डाल दिया। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के लीन हो जाती हैं, फिर नदी का नाम नहीं रहता। समुद्र में जो नदी आकर के मिल गई, अब ये कौन से नदी का जल है, सब समाप्त हो गया। इसी प्रकार से जो अपने बुद्धि को, शरीर आदि को, मन को, सब को जो मुझे अर्पित कर देते हैं, बस वो मेरे ही स्वरूप वाले हो जाते हैं। इसलिए गोपियां ज्यादा जानने वाली नहीं थी, लेकिन ब्रह्मम परमम प्रापुः, ब्रह्म स्वरूप वो मुझे प्राप्त हो ही गई। उनको पता नहीं कि हम कोई ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं, भले ही मत हो लेकिन वो मुझे प्राप्त हो गई। इसलिए ज्यादा शास्त्र के पछड़े में मत पड़ो, ध्यान दें भगवान के हृदय की बात चल रही है। हो आगे उद्धव फिर नया प्रश्न भी करेंगे, कहते हैं ज्यादा शास्त्र के पछड़े में मत पड़ो, ये करो और ये मत करो, ये सुनो और ये मत सुनो, इन सब को छोड़ करके प्यारे उद्धव, सब को छोड़ करके संपूर्ण प्राणियों की जो मैं आत्मा हूं, एकमात्र तुम मेरी शरण हो जाओ। या ही सर्वात्म भावेन, तुम्हें फिर कोई किसी प्रकार से भय नहीं होगा। उद्धव जी कह रहे हैं कि महाराज, अभी अभी आप दसवें अध्याय में ये कह के आए हैं कि भाई आप शास्त्र में प्रवृत्ति मूलक कर्म और निवृत्ति मूलक कर्म है, इनको तुम मेरे लिए करो, और यहां आप कहते हैं कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, हे उद्धव उत्सृज्य माम शरणम व्रज। शास्त्र का विधि निषेध श्रुत श्रोतव्य प्रवृत्ति निवृत्ति, इन सबको छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आओ, यहां तो आप ये कह रहे हो। और अभी दसवें अध्याय में कह के आए थे कि प्रवृत्ति कर्म को करना चाहिए, निवृत्ति कर्म को करना चाहिए, और मेरी शरण आना चाहिए, मेरी तरफ आना चाहिए, मेरे परायण होना चाहिए, उधर आप ये कह रहे हो। तो महाराज मेरे संदेह हो रहा है कि शास्त्र के विधि निषेध का पालन करें या आपकी शरण हो जाए, क्या करें हम, और आप स्वयं दोनों की आज्ञा दे रहे हो, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं शाये सजीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठ। देखो उद्धव, ये शास्त्र कैसे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, और शब्द का क्या रूप है तुम जानते हो, शब्द कहां से उठते हैं, नाभि के नीचे जो वास्तव में मूल आधार चक्र है वहां पर एक अनहद नाद रहता है, वो अनहद नाद है वो मेरा ही रूप है, उस अनहद नाद को परावाणी जब धक्का लगाती है तब वो पश्यंती माने नाभि तक वो आती है जहां पर मणिपुर चक्र है, यहां आकर के जब वायु का धक्का लगता है तब वो हृदय में पश्यंती नाम की वाणी बनता है, और वही आकर के फिर मुंह से द्वारा बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, तब फिर वो वैखरी वाणी होती है। वो मेरा अनहतनाद बहुत सूक्ष्म है, आकाश में जैसे आग है बहुत सूक्ष्म है, और लकड़ी के अंदर जैसे आग है वो बहुत सूक्ष्म रूप से रहती है, संघर्षण से ही वो पैदा होती है, आकाश में भी बदलों के, जल के और वायु के टकराहट से बिजली पैदा होती है, आग अग्नि तो रहती है कभी कभी प्रकट होती है, इसी प्रकार से वो अनहतनाद है, वो अनहत नाद ही परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी के रूप में अभिव्यक्त होता है, और उसी प्रकार से तत्त्व इंद्रियों का व्यवहार भी वहीं से प्रकट होता है, संकल्प विकल्प को करने वाला जो मन है उस मन में भी वहीं से ही शक्ति आती है। वो कौन है, वो मैं ही हूं। तो शास्त्र शब्दों से बनता है और उसको गुरु कहते हैं और दूसरे लोग सुनते हैं और सुनकर के आचरण में लाते हैं, लेकिन इसका मूल आधार तो मैं ही रहा ना। तो जैसे कपड़े के अंदर तंतु ही तंतु है, सूत ही सूत है, ऐसे शास्त्र का मूल कारण मैं हूं, इंद्रियों का मूल कारण मैं हूं, मन का मूल कारण मैं हूं। देखो वो गुरु जी कहेंगे और शिष्य सुनेगा, सुनेगा और मनन करेगा। तो पहले गुरुजी ने मनन किया, बुद्धि से निश्चय किया, अनुभव किया, फिर कहा और फिर सुना और फिर मन में मनन किया और फिर निश्चय किया। इन सब के मूल में मैं ही हूं, तो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, ये मेरा असली तात्पर्य है। सएस संसार तरु पुराण कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते द्वेष बीजे शतमूल। देखो संसार रूपी वृक्ष है, सुख और दुख इसके दो फल है और सैकड़ों प्रकार की जो कामनाएं है वो इसकी जड़ें हैं। पंच महाभूत है या पंच विषय है ये इसके स्कंद है। इस प्रकार से 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं। इसमें ईश्वर और जीव ये दोनों पक्षी हैं। पक्षियों में से जो दो इसके पक्षी हैं कौन, एक तो बद्ध और एक मुक्त। इसमें से जो संत महात्मा है वो तो है हंस के समान, और विषयी पुरुष है, बद्ध जीव है, वो है ग्रामेचरा गृध्रा, जो घर गृहस्थ के भोगों को चाहने वाले हैं वो है गीद के समान। गीद की देखो दृष्टि, वो उड़ान तो बहुत ऊंची रहती है, लेकिन गीद को जमीन पर पड़े हुए किसी पशु के आंख के अंदर थोड़ा बाजरी का दाना होता है वो भी गीद को दिख जाता है। तो उड़ान तो इतनी ऊंची है और दृष्टि इतनी नीची है। ऐसी बातें बहुत बनाते हैं विषयी आदमी, लेकिन अंत में घूम फिर करके उनका अंतिम व्यवहार केवल भोग प्राप्ति ही रहता है। वो इस संसार के इस दुखदायी फल को भोगते ही रहते हैं। और हंसा ये एकम बहुरूपम इज्जिर मायामयम वेद सवेद वेदम। और जो हंस परमहंस पुरुष होते हैं, माने जैसे हंस नीर क्षीर का विवेक करने वाला, ऐसे संत महापुरुष सत असत का ज्ञान करने वाले, विनाशी अविनाशी का ज्ञान करने वाले, हे उपादे का ज्ञान करने वाले, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान करने वाले और शरण्य और अशरण्य का ज्ञान करने वाले, ऐसे जो हंस महापुरुष हैं बहुरूपम माम, सब जगह एक ही वो बहुत रूपों वाला है, इस प्रकार से जानते हैं। वही वास्तव में सार को जानते हैं, वही वेद को जानते हैं और वही शास्त्र के रहस्य को जानते हैं, सवेद वेदम। तो तुमने कहा ना कि शास्त्र का क्या करें, तो भाई शास्त्र का अंतिम परिवसान भी मेरी शरणागति है। तो गुरुजनों की उपासना से अज्ञान को दूर करके और जीव का जो अपना आशय है, जीव का जो बंधन है, जो कारण शरीर के साथ संबंध है, बिना प्रमाद के उसको काट करके हर दृष्टि से तुम्हें मेरी ही शरण लेनी चाहिए। और हे उद्धव, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये बुद्धि के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बुद्धि में ही पैदा होते हैं और बुद्धि से, बुद्धि ही सात्विकी होती है, बुद्धि ही राजसी होती है, बुद्धि तामसी होती है, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को दबाया जा सकता है। तब कहते हैं कि भाई सत्वगुण की वृद्धि कैसे करो, कि सात्विक चीजों की उपासना करोगे तो सत्व बढ़ेगा और सत्वगुण बढ़ेगा तो मेरी भक्ति पैदा होगी। इसलिए रजोगुण और तमोगुण के शास्त्र हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ये गुण के लिए बता रहे हैं कि गुण किन से बढ़ता है, एक तो पुस्तकों से बढ़ता है। यदि राजसी पुस्तकें पढ़ेंगे, तामसी पुस्तकें पढ़ेंगे तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा, और सात्विक पुस्तकें पढ़ेंगे तो सात्विक जो है भाव पैदा होंगे और उससे भगवान कहते हैं मेरी भक्ति पैदा होगी। सबसे पहला उसका शास्त्र है, पढ़ता क्या है वो, फिर जल है, प्रजा है, देश है, काल है, कर्म है, जन्म है, ध्यान है, मंत्र है। ये मतलब सात्विक मंत्र है कि राजसी तामसी मंत्र है, भगवान विष्णु के आराधक मंत्र है अथवा और कोई देवी देवताओं के जिनके यहां तरह तरह की निषिद्ध वस्तुओं का भोग लगता है उनका मंत्र है। ध्यान हमारा किनका हो रहा है, ध्येय हमारे कौन है, भगवान है अथवा कोई भूत प्रेत पिशाच है। मंत्र भी भूत प्रेत पिशाचों की जागृति के लिए भी होते हैं। और किसी का जन्म है सात्विक परिवार में है कि राजसी परिवार में है कि तामसी परिवार में है, वो जो कर्म कर रहा है वो सात्विक कर रहा है कि या राशि तामसी कर रहा है। इस प्रकार से समय अभी कौन सा है, राशि रजोगुण की वृद्धि वाला है अथवा सत्वगुण की वृद्धि वाला है, देश कौन सा है और साथी कैसे हैं, जल कैसा है, खाद्य वस्तु कैसी है और उसके पास में पढ़ने की चीजें कैसी हैं, इन सब के द्वारा गुणों की वृद्धि होती है। दशैते गुण हेतव, एक संस्कार कैसे हैं, इनके द्वारा गुणों का उत्कर्ष और अपकर्ष का ज्ञान होता है। तो कहते हैं क्या करें, जिसका रजोगुण और तमोगुण बढ़ावा हो तो कि कोई हर्जा नहीं, रजोगुण और तमोगुण बढ़े हुए हैं तो इनको नीचा किया जा सकता है, सत्वगुण की अभिवृद्धि की जा सकती है। तो कैसे की जाए कि सात्विक ही शास्त्र हो, सात्विक ही खान पान हो, सात्विक देश हो, सात्विक ही समय हो, सात्विक क्रिया हो, सात्विक हमारा ध्येय हो, सात्विक मंत्र हो, तो उससे हमारे सात्विक संस्कार पड़ेंगे और फिर अंत में रजोगुण और तमोगुण के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और जब सत्व की वृद्धि होगी तब धर्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और रजोगुण और तमोगुण होंगे तो भाई उससे हमारा विनाश होगा। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि महाराज मनुष्यों को सबको पता है कि इन विषयों का सेवन है हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है, लेकिन फिर भी ये लोग उन विषयों को भोगते ही रहते हैं। विदंती मर्त्या प्रायण विषयान पदम आपदाम। किसी भी आदमी से पूछ लो कि क्या भाई धन में सुख है, तो वो कहेगा नहीं धन में सुख तो नहीं है। अच्छा तुमको कोई राजा बना दे, सत्ता दे दे, मिनिस्ट्री दे दे, सुख है? उनके जीवन को बहुत खतरा है, घर से आराम से निकल भी नहीं सकते, घर में आराम से सो भी नहीं सकते, मिनिस्टरों को कष्ट है। माने सत्ता मिली उनको भी कष्ट, धन मिला उनको भी कष्ट, अधिकार मिला उनको भी कष्ट, जानते भी ये कष्ट है, लेकिन जाने फिर क्या बात है। स्वयं खरा जबत कुत्ते की तरह से, गधे की तरह से, बकरे की तरह से वे वापिस उन भोगों में जाकर पड़ते हैं। ये बात क्या है, कुत्ता है वो डंडा खाते फिरता रहता है फिर भी जाकर उधर ही मुंह लगाता है, ऐसे ही गधा है, ऐसे ही बकरे हैं, कहते हैं लात खा करके भी नहीं संभलते, बात क्या है ये। भगवान कहते हैं देखो विषयों का सेवन का परिणाम इनके सामने आता है, लेकिन फिर भी ये छूटते नहीं है, विषयों से अलग नहीं होते, इसका कारण क्या है? इसका मूल खास कारण है कि अहम इति अन्यथा बुद्धि। सबसे पहले इन्होंने शरीर को मैं बना लिया, शरीर को मैं मान लिया। शरीर को मैं मानने के कारण से ही अब विषयों का फल तो सामने आता है, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। उनको पता ही नहीं मेरा खास बंधन कहां से हो रहा है। जैसे कोई नौका में बैठे हो और पतवार भी खेल रहे हो, लेकिन उसकी गांठ रस्सी से बंधी हुई है, अब कितना ही खेते रहो वो जाएगा नहीं। कितने ही विषयों की निंदा कर दो, कितने ही धन की निंदा कर दो, कितने ही पद की निंदा कर दो, कितने ही संसार को नश्वर बता दो और जीना नहीं है मरना है कितनी बार कह दो, लेकिन भीतर से यदि देह के साथ संबंध है तो उसका रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा ही। और जब रजोगुण के साथ में बढ़े हुए रजोगुण के साथ में मन का संबंध होता है, तब मन में कई संकल्प विकल्प उथल पुथल होते ही रहते हैं, और जब उथल पुथल होते हैं तब उन संकल्पों में कामना पैदा होती है, कामना पैदा होती है तो फिर गुणों का ध्यान होता ही, विषयों का चिंतन होता ही है, और विषयों का चिंतन होता है तो फिर विषयों में प्रेम बढ़ता है, और विषयों में प्रेम बढ़ता है तो फिर विषयों की प्राप्ति के लिए इच्छा होती है, और विषयों की प्राप्ति के लिए इच्छा होती है तब फिर उसको दुख उठाना पड़ता है। तो दुखोद कर्म दुखोदरकाणी संपर्शन रजो वेग विमोहित है। जैसे कोई वेग में चढ़ा हुआ है अब वो रुकने वाला नहीं, ऐसे ही रजोगुण के वेग में जब वो चढ़ गया है अब कितना ही संसार को नाशवान बता दो, लेकिन संसार से उसकी आसक्ति छूटती नहीं है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण के साथ मिल गया और ये मन का ये देह को अपना मान लिया, ये यहां से इसकी सारी गड़बड़ पैदा हुई है। इसलिए क्या करना चाहिए, अब देह के साथ आसक्ति हो गई तो भाई इस कर्मों को मेरे अर्पण करो, मन को मेरे अर्पण करो, अपनी कहलाने वाली चीज वस्तुओं को मेरे अर्पण करो, और फिर मेरा ध्यान करो, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाओ बिना किसी प्रमाद के। मन मई अर्पये छनई, ये धीरे धीरे मन को मेरे अर्पण कर दोगे तो इसका रजोगुण का वेग शांत हो जाएगा, तमोगुण का वेग शांत हो जाएगा और ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। यही बात मैंने एक बार सनकादिकों के सामने कही थी कि अपने मन को सब प्रकार से आकृष्ट करके और मुझे ही लगा, सब जगह से हटा करके मुझ में ही लगा दो। द्वारिका जी के राज प्रासाद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद चल रहा है। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रायः मनुष्य जानते हैं कि विषय सेवन है, विषय आसक्ति है, ये परम आपत्तियों का स्थान है, फिर भी इनसे विमुख क्यों नहीं होता है? तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि शरीर के साथ मैंपन का संबंध कर लिया, इस कारण रजोगुण की वृद्धि होने पर मन में तरह तरह के संकल्प उठने लगे, तो उन संकल्पों की पूर्ति के लिए ये फिर विवश हो गया। कहते हैं कि यही बात मैंने पहले सनकादिकों के सामने कही थी। उद्धव जी ने पूछा कि हे केशव, सनकादिकों के सामने आपने यह योग बताया, किस रूप में बताया? मैं भी उस ज्ञान को सुनना चाहता हूं। तो भगवान कहने लगे कि हे उद्धव जी, एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए और साधन की जो सबसे अंतिम बात है, योग की जो बहुत महीन बात है, उसके लिए उन्होंने आकर प्रश्न किया अपने पिताजी के सामने। सनकादिकों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमारा चित्त है वो तो विषयों में बैठ गया, और विषय है वो चित्त में आकर बैठ गए। अब इन दोनों का त्याग कैसे होवे? हम इस विषयाशक्ति से पार होना चाहते हैं, माने विषय सामने आते हैं तब चित्त हमारा आकृष्ट हो जाता है, विषय सामने नहीं रहते हैं तब भी विषयों का चिंतन होने लगता है। तो जब विषयों का चिंतन होता है तो इसका अर्थ यह है कि चित्त में विषय पड़े हुए हैं, तभी तो चिंतन हुआ। और कभी कभी सामने अकस्मात विषय आते हैं तो हमारा मन प्राप्ति के लिए लालायित होता है, इसका अर्थ चित्त विषयों में हमारा चित्त चला गया। तो विषयों में चित्त चला गया और चित्त में विषय पड़े हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, इनका त्याग कैसे किया जाना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि बेचारे ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर आया नहीं, क्योंकि वे तो हरदम कर्म के अंदर लगे हुए थे, और ये ज्ञान की अंतिम बात है, ज्ञान में भी साधना की अंतिम बात है, ये अंतिम बात बेचारे कैसा सोचते? आप पूछने वाले और कोई होते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन अपने ही मानस पुत्र है, इनको क्या जवाब दे? वे कह दें कि हमको आता नहीं तो अच्छा नहीं लगे, और उत्तर भी नहीं आता और कहना भी नहीं आता ये कि भी हमको आता नहीं है। तो ब्रह्मा जी उस समय में मुझे याद किए, इस प्रश्न से पार होने की इच्छा से उन्होंने मुझे याद किया, तो मैं तत्काल उनके बीच में हंस बनकर के खड़ा हो गया। ये भगवान का हंसावतार है, वो यही है। कहते हैं कि मैं वहां जब हंस बनकर के आया तो उस समय में उन सनकादिकों ने मुझसे कहा कि भाई को भगवान, आप कौन आ गए? ये हमारे पिता हैं, हम इनके बेटा हैं, हमारी आपस में बातचीत चल रही थी, आप हम दोनों के बीच में कैसे आ गए? क्या परिचय आपका? तो मैंने उनसे कहा कि भाई, यदि वास्तविक वस्तु में नानात्व हो तब तो ये कहा जा सकता है कि हमारे दोनों के बीच में आप कहां से आए। लेकिन वस्तु नाना नहीं है, वास्तविक जो वस्तु है सत्य तत्व है, उसमें तेरा मेरा आपका इनका उनका ये कोई शब्द लागू नहीं पड़ता। एक परमात्मा ही परमात्मा है तो उसमें तेरा मेरा ये लागू कहां पड़ता है? तो आपके पूछने का क्या आशय है मैं जानता नहीं। क्या पूछना चाहते हैं आप? आत्मा की दृष्टि से पूछो तो आप हम सब एक है, और पंच महाभूतों की दृष्टि से पूछो तो तुम्हारा भी पंचभूतात्मक शरीर है, ब्रह्मा का भी यही है, मेरा भी यही शरीर है, पंचभूतों वाला हंस बने हुए भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भी ये पंचभूतों से बना हुआ। तो फिर तुम कौन हो? ये भेद बुद्धि वहां भी नहीं हो सकती, ये भेद बुद्धि तुम्हारे कहां से आई? वाचा रंभो ये अनर्थक है, ये बाणी से बोलना आपका अनर्थक है। तो वो एकदम सकते में पड़ गए कि अरे भाई ये सामान्य हंस नहीं है, कोई ज्ञानी है। वे आंख फाड़ फाड़ करके मेरी ओर देखने लगे। तो मैंने मुस्कुराते हुए उनको कहा, ए सनकादि ऋषियों, मैं आपको एक सूत्र की बात बता देता हूं, पते की बात बताता हूं, सब जगह उसको लागू कर लेना कि मनसा वत्सा दृष्ट्या गृह्यते न्यैरपीन्द्रिय अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यध्वमञ्जसा। के शरीर से मन से और वाणी से इंद्रियों से इन सब से आप जिसका भी ग्रहण करते हैं, मन से आप जिसका मनन करते हैं, वाणी से आप जिसको बोलते हैं, दृष्टि से आप जिसको देखते हैं, मन से आप बुद्धि से आप जो सोचते हैं, इंद्रियों से आप जो जो काम करते हैं, वो सब कुछ मिला करके मैं ही बनता हूं। कानों से सुनते हो तो वो शब्द भी मैं हूं, नेत्र से देखते हो तो वो रूप भी मैं हूं, रसना से चखते हो वो रस भी मैं हूं, त्वचा को जिससे छूते हो वो स्पर्श भी मैं हूं, और कान से जिसको सूंघते हो वो गंध भी मैं हूं, और सूंघने वाली इंद्रियां जिसके साथ जुड़ करके काम करती हैं वो भी मन भी मैं हूं, मन के संकल्प में जो आता है वो भी मैं हूं, बुद्धि के निश्चय में जो आता मैं ही हूं। मैं ऐसा हूं कि न मत्त अन्यत्, मेरे से अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो, स्पष्ट रूप से जान लो। और आपने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है कि गुणों में तो चित्त बैठ गया और चित्त में आकर विषय बैठ गए, तो देखो यदि विषयों से और चित्त से ऊपर उठना चाहते हो तो विचार करो कि विषय है और चित्त है, ये क्या है? ये जीव की उपाधि है। जैसे घड़े के अंदर खाली जगह है वो आकाश है, उसकी घड़ा उपाधि है, ऐसे ही विषय है, चित्त है, इंद्रिया है, ये उपाधियां है, जीव के द्वारा बनाई हुई उपाधि है। और जो ही इस उपाधि का त्याग कर दोगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो न तो तुम्हें चित्त से मतलब है और न तुम्हें विषयों से मतलब है। बार बार विषयों का सेवन करने के कारण से चित्त है वो विषयाकार हो गया, इसलिए विषय सामने आते चित्त खींचता है, और जब विषय नहीं है तो मन में विषयों का चिंतन होता है। ये क्या हुआ कि अभीक्षणम गुण सेवया, विषय का सेवन करने का ये दुष्परिणाम हुआ है। चलो अब हो भी गया तो अब कि मद रूप है उभयम त्यजेत, इन विषय का भी जो साक्षी है और चित्त का भी जो साक्षी है, जो ये कह रहा है कि चित्त विषय में और विषय चित्त में बैठ गए, इसको जो कहने वाला जानने वाला है वो वास्तव में मेरा स्वरूप है, उसको उसी में ही स्थित हो जाना चाहिए। तुम्हारे सामने विषय कब आते हैं भाई? कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में आते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो स्वप्न में, कुछ ऐसे विषय जो जागृत में, और सुषुप्ति के अंदर और विषय नहीं आता, लेकिन कारण शरीर तो रहता ही है, तो एक अज्ञान तो वहां रहता ही है। तो ये सब का सब बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि की वृत्तियां हैं, और इन सब को जानने के कारण से जीव है इनसे विलक्षण है, साक्षीत्वेन भी निश्चित है, वो साक्षी बना हुआ है। तो जब तक यह जीव गुणों में और विषयों में रहता है, तब तक गुण की वृत्तियां जीव को संसार का बंधन देती रहती हैं, और ज्यो ही गुणों से, और माने गुण का मतलब विषय, विषयों से और चित्त से ऊपर उठता है, तब बुद्धि का संसार का बंधन देने का काम समाप्त हो जाता है। बुद्धि के साथ जब जीव का तादात्म्य होता है, तो एक अहंकार पैदा होता है। उस अहंकार के कारण से जीव का जो स्वरूप है वास्तविक, उससे विपरीत उसको दिखने लगता है। स्वयं की सत्ता शरीर में दिखती है, विषयों में दिखती है, चित्त में दिखती है, भोग में दिखती है, और इनकी अनित्यता है, वो अनित्यता का ज्ञान नहीं होता पूरा। इसलिए विद्वान पुरुष वही है कि जो इस सूर्य में स्थित हो जाए, माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इनसे विलक्षण है, प्राग वैश्व तेजस प्राग्ञ से विलक्षण जो तुरी है उसमें स्थित हो जाए, और एक मेरे तत्व में नाना प्रकार से भ्रमित हुई बुद्धि जब तक निवृत्त नहीं होती है, तब तक वो व्यक्ति जागता हुआ भी सोए हुए के समान है। जैसे किसी को स्वप्न आया, स्वप्न में स्वप्न आया, वो स्वप्न टूट गया तब भी स्वप्न ही है, इसी प्रकार से जब तक हमारे अनुभव में एक सब कुछ सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है ये बात न बैठे, तब तक हम लोग समझते हैं कि बहुत जानकार है, समझदार है, और हमारी बुद्धि काम करती है, हम बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं है, स्वप्न के अंदर जगे हुए हो, वास्तविक जागृति नहीं आई है। देखो सनकादियों, उस तत्व में तो लेश मात्र भी अंतर नहीं रहता। जो जागृत में कहता है कि मैं जाग रहा हूं, सबको देख रहा हूं, वही स्वप्न अवस्था में स्वप्न के दृश्य का भोग करता है, और वही फिर कहता है कि मैं सोया लेकिन मुझे पता नहीं था और अब मैं जगा हूं। तो स्वप्ने सुषुप्ते उपसंहरते, माने जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, और सुषुप्ति के बाद फिर जागृति में, इन सब अवस्थाओं में जो अन्वित है, इन सब को जो जानने वाला है, वो वास्तव में सबका स्वामी है, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का, सबका वो स्वामी है। ऐसा विचार करके अपने हृदय में ऐसे अपने अनुमान रूपी तलवार की तीक्ष्ण धारा से, अनुमान सदुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासीना भजतमा अखिल संशयाधिम, सारे संशय को मिटा देने वाले मेरे स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और सारे संसार को देखो तो ऐसा देखो कि अपने स्वयं के संकल्प से संसार दिखता है। देखो संसार में वातावरण एक जैसा ही है, लेकिन सबको अलग अलग दिखता है। किसी के मन में प्रफुल्लता है तो संसार बहुत अच्छा दिखता है, किसी के घर में गमी हुई हुई है तो संसार और ढंग से दिखता है। क्या बात है कि अपनी कल्पना से हम लोग संसार को देखते हैं, तो विचार करना चाहिए संसार वास्तव में क्या है, हमारी कल्पना ही है संसार। संतों ने कहा है कि जो दृष्टि है वो दृष्टि ही सृष्टि को बनाती है, जैसी हमारी दृष्टि वैसी ये जगत की ये सृष्टि। तो सृष्टि की इतनी महत्ता नहीं है उद्धव जी, सनकादि ऋषियों उसकी इतनी महत्ता नहीं है, विज्ञान अमेक मूर्धेव इन सब को जानने वाला है, वही वास्तव में नाना रूप से हम लोगों को भाषित हो रहा है, लेकिन वो जानने वाला है एक ही। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जाता हूं, आता हूं, पढ़ता हूं, तो इन क्रियाओं में भेद है, लेकिन मैं वही रहता है बस। और जगह से मन हटाकर अपने उसी स्वरूप में मनुष्य को स्थित हो जाना चाहिए। और निवृत्त तृष्णा संसार की कोई इच्छा न करके अपने स्वरूप में स्थित होवे और तूष्णिम भवे, चुप हो जाना चाहिए। न तो कोई संसार का कोई व्यवहार करना, न चिंतन करना, न चेष्टा करना और न करना, इन दोनों से एकदम उपराम हो जाना चाहिए। और ऐसे उपराम होने से क्या कि निज सुखानुभव है, अपने स्वरूप का जो अनुभव है, आनंद का जो अनुभव है, वो उसे स्वतः होता है। और जब इस अवस्तु को, माने अवस्तु रूप जो संसार है, इसको हमने यदि मन से निकाल दिया, माने मन से इसको सत्ता नहीं दी है, तो फिर भाई उसकी मस्ती को वो ही जानता है। वो इस नश्वर शरीर के रहते न रहते कोई उसकी आकांक्षा नहीं रहती। उसके मन में शरीर रहे तो क्या, न रहे तो क्या, अनुकूलता आ जाए तो क्या, प्रतिकूलता चली जाए तो क्या, अनुकूलता आ जाए तो क्या, प्रतिकूलता रहे तो क्या, चली जाए तो क्या, कोई इसके सामने अनुकूलता का कोई सुख नहीं है, प्रतिकूलता का कोई दुख नहीं है। यह मैंने आपको हे सनकादि ऋषियों सांख्य और योग की अंतिम बात कही है। और सांख्य और योग का प्रवक्ता मैं हूं, मैं वास्तव में हूं निर्गुण और सबका सुहृद, लेकिन मेरे अंदर दिव्य दिव्य गुण है, इसलिए लोग मुझे सगुण भी कह देते हैं। ये मेरा रूप है, तुमने मेरा परिचय पूछा था, वो परिचय मैंने आपको बताया है। सनकादि ऋषियों का संदेह दूर हो गया और उसके बाद उन सनकादि ऋषियों ने मेरा खूब स्तवन किया, फिर उनके द्वारा मैं पूजित हुआ, वे अपने धाम में चले गए, मैं मेरे धाम में चला गया। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि महाराज, संसार में कल्याण की प्राप्ति के लिए ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बताए हैं, उन साधनों में सारे के सारे साधन मुख्य हैं या एक मुख्य है और बाकी सब गौण है, ऐसा है क्या? अभी अभी आपने तो कहा कि भक्ति योग सबसे बड़ा है, तो महाराज और लोग और को बड़ा मानते हैं, तो इसमें क्या चीज हम माने, ये आप हमको समझाइए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, उद्धव जी, जिस समय में प्रलय आता है तो ये ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। फिर मैं ब्रह्मा को पैदा करता हूं, ब्रह्मा को पैदा करता हूं, फिर ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है, फिर ब्रह्मा अपने बेटों को ज्ञान देता है, फिर वो अपने बेटों को ज्ञान देते हैं, ऐसे ज्ञान देने की परंपरा चलती है। उस परंपरा के चलते चलते लोग अपनी अपनी बुद्धि से उस ज्ञान को पकड़ते हैं। पितरों ने अपने ढंग का ज्ञान पकड़ लिया, देवताओं ने, दानवों ने, गुह्यकों ने, मनुष्यों ने, सिद्धों ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, चारणों ने, किंदेवों ने, किन्नरों ने, यक्षों ने, राक्षसों ने, किम पुरुषों ने, अपने अपने प्रकृति से उस ज्ञान को अपने अपने ढंग से समझ लिया। जैसे कोई बात तो एक ही कही जाती है, लेकिन अपने अपने स्वभाव से लोग अलग अलग ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं, ऐसे लोगों ने अर्थ निकाल लिया। और अर्थ निकाल करके और यहां तक चित्रावाचा श्रवणतीय, विचित्र विचित्र बात बोलने लग गए। तो इस प्रकार से प्रकृति वैचित्र्यात, लोगों के स्वभाव की भिन्नता से मेरी वाणी का लोगों ने अलग अलग अर्थ कर लिया। वे माया से मोहित होकर उसका अलग अलग अर्थ करने लगे। इतना ही नहीं, पाखंड मतयो परे के, कि हमारी वाणी में ऐसा अर्थ निकाले कि जिससे पाखंड का ही प्रचार कर दिया। किसी ने कह दिया कि धर्म बड़ा है, किसी ने कह दिया यश बड़ा है, किसी ने कह दिया कि भाई संसार में हम इच्छा करें और उसकी पूर्ति होवे, यही चीज बड़ी है। किसी ने कह दिया कि निग्रह बड़ा है, किसी ने कह दिया स्वार्थ बड़ा है, किसी ने कह दिया ऐश्वर्य बड़ा है, किसी ने कह दिया त्याग बड़ा है। ऐसे जिनके मन में जो जो बात जच गई उसको बड़ा मान लिया। कोई यज्ञ को, कोई तप को, कोई दान को, कोई व्रत को, और ऐसा कर करके उन्होंने कई लोगों की प्राप्ति का साधन बनाया। पर यह देखना चाहिए कि आद्यंतवंत एवेशाम लोका कर्म विनिर्मिता, ये जितने कर्म के द्वारा जो लोक मिलेगा वो तो सब आदि और अंत वाला मिलेगा। क्योंकि कर्म स्वयं आदि और अंत वाले हैं, तो इनसे मिलेगा वो भी आदि और अंत वाला ही मिलेगा। लेकिन इन सब के अंदर एक विचित्र बात है, यही कर्म यदि लोक प्राप्ति के लिए, संसार प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए न किया जाकर मुझे ही अर्पित किया जाता है, तो मयात्मना सुखम यत्तत् कुतस्याद् विषयात्मना, तब ऐसे लोगों को जो कि कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, इतना उनको सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है, जो विषयों की तरफ दौड़ने वाले को मिल ही नहीं सकता है। और जो आकिंचन है, दांत है, शांत है, और मेरे लिए ही और मया संतुष्ट मनस है, सर्वा सुख मया दिश है, कहते हैं जो मैं कर देता हूं उसमें वे संतुष्ट मना है, मेरे हर विधान में प्रसन्न है, उन लोगों के लिए सब जगह आनंद ही आनंद है। उन लोगों को चाहे ब्रह्मलोक में भेजो तो उनका कोई मन में सुख नहीं, क्योंकि उनके ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं, न ब्रह्मलोक, न इंद्रादि लोक, न सार्वभौम, न रसाधिपत्य, न योग सिद्धि, न मोक्ष, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। वो ये कहते हैं कि बस हम जो करें सब आपके अर्पण कर दें, हमें तो आप चाहिए, आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो महात्मा होते हैं हे उद्धव, वो मुझे इतने प्रिय होते हैं, इतने प्रिय होते हैं, उतने मेरे ब्रह्मा भी प्रिय नहीं, शंकर भी प्रिय नहीं, संकर्षण भी प्रिय नहीं, और उद्धव क्या बताऊं, मुझे लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं, और तो और ऐसे व्यक्तियों के सामने मैं अपने आप से भी इतना प्रेम नहीं करता जितना मैं आप जैसों से प्रेम करता हूं, इतना मुझे वो प्रिय लगते हैं। निरपेक्षम, देखो निर्गुण में भी यही बात है, कल बात आई थी कि भगवान अपने अंत को नहीं जानते, सगुण भगवान अपने स्वरूप के ऊपर मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान यहां भी कहते हैं कि जब प्रेम करने लगता हूं तो अपने आप से भी इतना प्रेम नहीं करता हूं जितना भक्तों से करता हूं, ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान ही कर सकते हैं ऐसा।